क्या है कि एक तरफ बैठ जाते हैं जबकि सामने जगह मौजूद है, इसकी इसका भी तवज्जो, मजलिस में जगह छोड़ देना। इसी तरह हकीम उल उम्मत ऐसे बैठने को मना फरमाते थे, ऐसे बैठते। अरे आलम तो यह है कि पीठ पीछे रिवर्स गियर लगा के जाते और बैठते ऐसे, दोनों पांव फैलाए अपने बड़ों की तरफ बैठे हुए, और इसका नाम क्या रखा? अदब। मजमून चल रहा था सवाल का, मंशा यानी मकसद का, वो जरा सा हुक्म पाके, और अगर जवाब समझ में आ गया है तो कम से कम इतना तो कह दे कि ठीक है। खामोश बैठने और तकलीफ हो अब तकल्लुम के खिलाफ। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई बात फरमाते थे समझत भी हो या खाली मुंडी हिलावत हो, पूर्वी पूरब के दिन इलाहाबाद में, समझत भी हो या खाली मुंडी हिलावत हो, अरे जालिम कुछ समझता भी है या? लेकिन बहरहाल हजरत भी फरमाते थे, अरे मियाँ कुछ हमकारा ही भर लिया करो। ये समझ में आया, कुछ सुभान अल्लाह, कुछ माशा अल्लाह, ये बात समझ में आई। बिल्कुल गुमसुम न बैठे, ये भी आदाब के, मजलिस के अदब के खिलाफ है। अदब फरमाए कि बाज लोग अपने घरों में बगैर पुकारे चले जाते हैं, बड़ी गंदी बात है। न मालूम घर की औरतें किस हालत में हो, या कोई महल्ले की ना महरम औरत घर में हो, इज्न लेकर यानी इजाजत लेकर, अजीब, और ये शरीफ हदीस शरीफ को पेश किया जिसका मफहूम कि यानी अपने घर में भी इजाजत लेकर जाए, ये मसला इस्तीदान कहलाता है, है? यानी एक आदमी अपने घर, साहबी ने आरस किया था इसी से मुताल्लिक के, मेरे घर में तो बिजन पालता है, तो आपने फरमाया इजाजत लेकर, फिर अरस किया, फिर फरमाया जा, फिर अरस किया मेरी सिर्फ वालदा है, अब फरमाई अजीब बात, आखिर फिर शायद फरमाया दिया कि क्या तुम चाहते हो कि उनको किसी नाजेबा हालत में देखो। इंसान समझता है कि चलो भाई कोई नहीं है, कभी अपनी उज़्र कोई वजह से कोई दवाई लगानी है, कोई कुछ नहीं दाखिल हो, और इजाजत क्या अदब ये नहीं है, कमरे में घुस गए क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये डाका है, ये डाकू है, डाकू इसको क्या फरमाया, ये डाकू है, घुस गया अब उसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मोमिन का हक ये भी है कि अच्छे अलकाब से खिताब करें। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हक दूसरे मोमिन पर यह है कि उसका ऐसे नाम और लकब से जिक्र करे जो उसको ज्यादा पसंद हो। इसलिए अरब में कुनियत का रिवाज आम था, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद फरमाया। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास खास साहबों को कुछ लकब दिए, सिद्दीक अकबर को आतिक फरमाया, हज़रत उमर को फारूक, हज़रत हमजा को असदुल्लाह, और खालिद बिन वलीद को रज़ियल्लाहु ताला मजमाइन को सैफुल्लाह फरमाया। ये भी कदम है, अच्छे नाम से पुकारे। जैसे आलिम है मौलवी साहब, हाफिज है हाफिज जी, ये भी एक अदब। हमारे शेख का मामूल दफन होता है, अरे मियाँ, अरे मियाँ, हाँ। और इसकी जिद ये हुई कि कोई उसके किसी आयब या कोई ऐसी बात से ना पुकारे जिससे उसको अजियत और तकलीफ हो, अहमक, बेवकूफ, उल्लू वगैरह जारी। और ये भी हराम और गुनाह कबीरा है, लेकिन बाज लोग इससे मुस्तस्ना है। मसलन शेख किसी को फरमाता है उसके उसी ऐप से उसको मजा आता है, तो इस पर अजर मिलेगा। लेकिन ये कायदा मोहब्बत का है, हर एक के लिए, यहाँ तक कि अगर शेख किसी को कुछ फरमा दे, तुम किसी मुरीद के लिए, पीर भाई के लिए जायज नहीं है कि वो उसकी नकल करे। उस्ताद है कभी किसी शागिर्द को तो मोहब्बत और बेतकल्लुफी होती है, कोई बात कोई नाम लेता है, जैसे कोई मोटा है, किसी मोटे को मोटा कहना जायज नहीं है, हराम है। लेकिन अगर शेख फरमा दे ओ मोटू, तो मस्त हो जाता है। सुभान अल्लाह। अधूरी बात न करें। एक शख्स नमक पड़वाने आया और बात पूरी नहीं कही, हजरत ने उसको फरमा दिया और फरमाया कि जब बात पूरी करोगे तब पढ़कर दूंगा। फिर मजमे की तरफ खिताब करके फरमाया, हदीस शरीफ में आया है कि एक शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिला इस्तिज़ान हाजिर हो गया बगैर इजाजत के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लौटा दिया और एक शख्स को हुक्म दिया कि इसको तरीका बतला कि इस तरीके से फिर आए। इससे मालूम हुआ कि तालीम अमली भी सुन्नत है। इसलिए हकीम उम्मत का ये अमल ना, ये तो फौजदारी कायम की हुई है। कहते थे क्या, फौजदारी कायम की हुई है, तो ये ऐसा नहीं है। हजरत ने देखो इसको कितना वाज़े फरमाया। सुभान। फरमाते अग़बिया को, अग़बिया गबी था नहीं, जाओ वापस बगैर इजाज़त के हमारे यहाँ सब बहुत दूर से आया। मैं तो सलीका, अच्छा आपको मालूम था ये, पूछा जी हजरत मालूम था, और पकड़ेंगे। फरमाया बस अगर मालूम था फिर भी अमल नहीं किया, मतलब इसकी यही उसूल है कि वापस जाओ, खत लिखो या टेलीफोन करो फिर आओ। माफ क्या, माफ तो कर दिया, माफ तो कर दिया, लेकिन करो ऐसा भाई दी वापस। वहां गए खत, वहां से टेलीफोन क्या इजाजत दे दी, वो थोड़ी थी इंतकाम लेना कोई बदला लेना। हजरत फरमाया कि अब सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, ये है उसूल। अच्छा भी माफ करना, यही यहीं से गड़बड़ पैदा होती है। ये मुस्तस्ना है बुड्ढा, आपने इस कायदे को इन पर क्यों जारी किया, ये भी मजलिस के आदाब के खिलाफ है, आप क्यों शेख बन गए। इस बुड्ढे को हमने इस्तिस्ना दिया है, देखते नहीं है 60 बरस का बुड्ढा हो चुका है वो बेचारा तो माजूर है, वो तो पांव फैलाए के भी बैठे तो मजलिस के खिलाफ नहीं है उसका। आपको क्या हक पहुंचता है, इसलाह करने आए हो या करवाने आए हो। उसको तो मैंने इजाजत दी हुई है पहले भी, वो बुढ़ा है यार, उसको भी तो देखो। जब आपको इस मर्ज के साथ सोने की इजाजत है, उस बुढ़े को ऐसे बैठने की इजाजत भी नहीं है क्या। आपको इतने दिन सोए रखे कभी जगाया, तो फिर क्यों आपने उस बुढ़े के साथ ऐसा किया। आज नींद उड़ी हुई है तो उसको उठा दिया, कमाल की बात है, अजीब बेवकूफी है ना। अब वो बुढ़ा आदमी है, अब देखो भी तो सही, अब बताइए कानून इस पर लगेगा क्या, वो अगर ऐसे बैठे हैं तो उसको क्या करें उस बुढ़े को। यही तो हकीम उलमा समझा रहे हैं, अब ठोकर मार के उसको ठीक कर रहे हो, इतने दिन सोते रहे कभी उठाया मजलिस में। अब देखो ये मरीज है, हार्ट तोड़ के आए रोजाना, यहाँ जालिम सामने बैठ के सोता रहा, कभी उसको नहीं उठाया हमने। ये सारे गवाह हैं मजलिस वाले, इतने गवाह हैं, इतने दिन सोता रहा कभी इसको नहीं उठाया, आज जाग रहा है तो दूसरों को छेड़ रहा है। ये तो सारी यही तो अदब चल रहे हैं, यही तो सीखने की चीज है कि भाई उसको क्या छेड़ रहा है। कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो, एक दिन इनको एक और गलती की, मैंने कहा दोनों कान पकड़ो। कहने कैसे पकड़ू? मैंने कहा बेवकूफ हो, वो तो मरीज हो, एक हाथ से बारी बारी दोनों पकड़ सकते हो कि नहीं? तो देखो हो गया ना, चलो भाई अभी सुन थोड़ी करेंगे, कैसे भी पकड़ो तो ये हाथ टूटा हो, लेकिन एक से तो दोनों पकड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, अगर यहूदियों की तरह कहना शुरू कर दे, कहना शुरू कर दे काल दुलना रब्बा का यू भाई लना माही कि क्या है, पूछ के बताएं। तो पहले शर्त लगी बारिदू वला बिक्र, आरिदू वला बिक्र, कि ऐसा हो जो ना बुढ़ा हो ना जवान हो, अधेड़ उम्र का। अच्छा अल्लाह में से पूछ के बताए रब्बा का यू भाई लना माँ लौनुहा, रंग कैसा हो, मस्ती थी ना? तो फरमाया कि अच्छा फाकिरुल लौनुहा और तसुर नादरीन, ऐसा उभरता हुआ चमकता हुआ रंग हो कि देखने वालों को मस्त कर दे, फिर भी मस्ती सूझी। قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا, अभी भी हमें कुछ शुबा है, और जरा वजाहत कर दे, वरना इंशाअल्लाह मतलब अब हम हिदायत याफ्ता होंगे। तब अल्लाह ताला फरमाया कि ऐसा बैल हो, ऐसा बकरा हो कि जो ना खेती में लगा हो ना पानी खींचने में लगा हो। तथा मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ऐसा बैल जब तलाश किया गया कि जिसका रंग भी तेज अच्छा हो, जो ना बुढ़ा हो ना जवान हो, खेती बाड़ी में कभी ना लगा हो, तो मिला बहुत मुश्किल से और बहुत महंगा मिला। इसलिए अदब सिखाया, अगर वो उसी वक्त बांध के मांग की कोई भी गाय कोई भी बकरा अगर जिदा कर देते तो उन पर जो है ना ये सब शरायत ना लगती, क्योंकि मुतलक था ना पहले, तो पहले था मुतलक कि अंतस्बाहु बकरा जिदा करो, अब वो पकड़ के कोई भी ले आते, पड़ोसी का पकड़ के ले आते कोई, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया अंतस्बाहु बकरा जिदा करो, बस बकरा गाय जिदा करो, कोई शर्त नहीं थी, ये खुद ही जालिमों ने शर्त लगवाई, गड़बड़ करनी थी ना, इसलिए यही तो माशरे की बात है जो सिखाने की है, सीखने की है, सिखाने की है। फिक्र से काम लेना चाहिए। चलो, एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि इतना लिख पड़ गए और सवाल करने का तरीका और सलीका ना आया, क्या खाक किताबें पढ़ी, बस ऐसे ही तोते की तरह रडटी होंगी, अगर समझ कर पढ़ते तो इस तरह बेहूदगी से सवाल ना करते, मुझको तुम्हारे सुनमान से सख्त तकलीफ हुई, आखिर तुम लोग क्यों ऐसे बेफिक्र हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत वाला माफ़ फरमाए, फरमाए कि सख्त अफसोस है कि आपके हालत पर कहाँ तक सब्र करूँ, अगर गलती और बदनवानियों पर इतला करता हूँ तो बदनाम होता हूँ, और ना कहूँ तो खराब व बर्बाद होते हूँ। सुभान, एक देहाती शख्स ने आकर अर्ज किया कि हजरत जी एक तावीज दे दो। तो हजरत ने फरमाया कि मैं समझा नहीं। उस शख्स ने आवाज़ बुलंद कहा एक तावीज दे दो। फरमाया कि मैं बहरा नहीं, सुन तो लिया था मगर समझा नहीं। इस पर वो खामोश हो गया, फरमाया कि अब गूंगा होकर बैठ गया। अरे पूरी बात क्यों नहीं कहता, क्या घर से कसम खाकर चला था कि जाकर परेशान करूंगा, आरस क्या और किस तरह कहूँ। फरमाया जा बाहर, इसी से पूछ करा कि मैंने इस तरह कहा था, आया ये बात नामुकम्मल है या मुकम्मल, पूछ कर आया उसका जी मेरी बात अधूरी थी, ऊपर से असर का तावीज दे दो। असर का तावीज लेने आया तो फरमाया कि इस देहाती ने बाजार में जाकर सौदा खरीदते वक्त और स्टेशन पर जाकर ऐसा कहा हो कि टिकट दे दो और जगह का नाम ना लिया, सारा जहल यहाँ ही के हिस्से में रह गया जिसको ऊपर असर हो रहा हो। एक तावीज तो उसको लिखूं और तेरा ऊपर असर जो मुझ पर हो रहा है तू मुझको सता रहा है, एक तावीज अपने वास्ते करूं। तो कहने लगा जी हम लोग गांव के लोग हैं, हमारी समझ बूझ ऐसी ही है। फरमाया तुम लोग बड़े होशियार हो, अच्छा तुम्हारी समझबूझ तो गांव के रहने की जैसे ऐसी है जो इस वक्त जाहिर हो रही है, और हम कस्बे के रहने वाले हैं, हमारी समझबूझ ऐसी है जो अब जाहिर हो रही है। एक घंटे के बाद आकर तावीज ले लो और पूरी बात कहना, कभी इस बात के भरोसे पर ना रहना कि मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। वो शख्स चला गया, एक घंटे बाद आया और पूरी बात कहकर तावीज लेकर गया। इस पर फरमाया, अब कभी इस बात को नहीं भूलेगा। सुभानअल्लाह, हजरत की तो वाकई। लेकिन बात यही है कि अल्लाह ताला ये हमें समझ अता फरमा दे और अल्लाह ताला अदब अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, मेरे शेख मेरे पीर व मुर्शिद आरिफ बिल्लाह रूहे थानी हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मलकदहू के मलफूजात फुयूज़े रब्बानी, ये इस किताब का तो नाम है मवाहिब रब्बानी। इसमें छह मलफूजात की किताबें हैं, उसका मजमूए का नाम मवाहिब रब्बानी है। तो पहला जो मजमूआ है मलफूजात का, उसका नाम है फुयूज़ रब्बानी, जो कि हरामैन शरीफैन के मलफूजात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर में फकीर भी हजरत की खिदमत में था। विलायत सिद्दीकियत की कुंजी, इरशाद फरमाया कि दर्द दिल से कहता हूं कि इस जमाने में एक ही अमल कर लीजिए, सिर्फ नजर बचा लीजिए। अगर औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सरहद को न छू लो तो कहना कि अख्तर क्या कहता था, दोस्तों इस भाव अल्लाह के कुर्ब का सौदा बहुत सस्ता है। इसकी बरकत से जब दिल में हलावत ईमानी आएगी तो हमको पूरे दीन पर अमल करने की तौफीक हो जाएगी। ये अमल करके देखिए, सुलूक के सारे रास्ते खुल जाएंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि आशिकों को माल की मोहब्बत नहीं होती, खुदा का कोई आशिक किसी की जेब नहीं काट सकता, चोरी भी नहीं कर सकता। आशिकों को बस हुस्न परस्ती की एक बीमारी होती है जी, कि हसीन शक्लों को दिखाकर शैतान उनकी निस्बत अल्लाह पर पर्दा डाल देता है। लिहाजा इस बेपर्दगी और उरियानी के जमाने में जो एक यही अमल कर लेगा, ला इलाहा की तकमील हो जाएगी। और जब सब बातिल खुदा निकल गए, अब सारे आलम में इल्लल्लाह इल्लल्लाह है। नौ रमजान मुबारक का ये मलफूज है। मदीना शरीफ सुबह 11 बजे 1417 हिजरी मुताबिक 18 जनवरी 1997 में इरशाद फरमाया कि तन्हाई की खलवत में अल्लाह की अहमियत, खलवत यानी अल्लाह के साथ कुछ तन्हाई भी होनी चाहिए। इरशाद फरमाया कि तन्हाई की इबादत भी जरूरी है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले खलवत महबूब की गई थी और गारे हिरा में आफ्ताब नबूवत तुलू हुआ, जिस पर मेरा शेर है हजरत का, खलवत गारे हिरा से है तुलू खुर्शीद, खलवत गारे हिरा से है तुलू खुर्शीद, क्या समझते हो तुम ऐ दोस्तों वीरानों को। खलवत गारे हिरा से है तुलू खुर्शीद, क्या समझते हो तुम ऐ दोस्तों वीरानों को। गारे हिरा में खलवत और सन्नाटा था, लेकिन नबूवत का आफ्ताब वहीं से तुलू हुआ। मगर आफ्ताब नबूवत मिलने के बाद फिर कारे नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ हो गए। फिर आपका गारे हिरा में जाना तो साबित नहीं है, लेकिन रातों में अल्लाह के साथ खलवत में रहे। बस जिन लोगों को खलवतों के बाद अल्लाह ताला दीनी खिदमत का मनसब अता फरमा दे, उनके लिए भी जरूरी है कि कुछ वक्त खलवतों में वो अल्लाह को याद करें। क्योंकि खलवत माल खालिक, जलवत माल खल्क के फैजान का जरिया बनती है। खलवत माल खालिक, जलवत माल खल्क के फैजान का जरिया बनती है। यानी जो खालिक के साथ तन्हाई करेगा, उस तन्हाई में जो अल्लाह ताला को का कुर्ब और ताल्लुक मिलेगा, फिर वो जलवत माल खल्क मखलूक के साथ जो जलवत होगी वो फैजान काम करेगा। خلوت میں اللہ سے لے اور جلوت میں دے. کیا پیارا جملہ نہیں, سیدھی سادھی اردو ہے, یعنی کتنی اب وہ خلوت میں مال خالق, جلوت مال خالق کے فیضان کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ تو کتنا علمی جملہ ہے نا, اور اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا سادہ, خلوت میں اللہ سے لے اور جلوت میں مخلوق کو دے. سبحان, وہ یہ کتنا علمی اور کیسی اور یہ کتنا آسان. سبحان اللہ, خلوت میں اللہ سے لے اور جلوت میں مخلوق کو دے. اس لیے جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی تاکید میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اگرچہ شیخ بن گئے مریدین ہیں لیکن اپنے شیخ کے پاس پابندی سے جایا کرتے. پھر حضرت اس کی ایک مثال دیتے تھے, فرماتے دیکھو ایک دکاندار ہے, وہ ہول سیل سے مال خریدنے نہیں جاتا, نتیجہ کیا نکلے گا, دکان ختم ہو جائے گی. لہذا بیچتا رہے, ہول سیل سے لا کر دکان میں ڈالتا رہے, اور اسی طریقے سے ہول سیل والا سپلائی کر رہا ہے آگے لیکن فیکٹری سے نہیں لیتا, نتیجہ یہی ہوگا گاہک چلے جائیں گے. فرمایا بس اسی طریقے سے جو مخلوق کو دینا چاہتا ہے, مخلوق کو دیتا ہے, اپنی ٹنکی خالی کرتا ہے, وہ اپنی ٹنکی بھرنے کا انتظام بھی تو کرے. اس نے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری کا معمول رکھے اور اس سے مستغنی نہ رہے, کیونکہ وہاں سے لے کر آئے گا پھر یہاں پر دے گا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں اللہ سے اتنا لو کہ تمہارے دل کا مٹکا انوار سے بھر کر چھلکنے لگے, تو مخلوق کو چھلکتا ہوا مال دو, اپنا مٹکا خالی نہ کرو. فرمائے یہ بات حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مجھے سنائی. بعض لوگ رات دن مخلوق کے ساتھ تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے ہیں لیکن اللہ کو خلوت میں یاد نہیں کرتے, ان کی تبلیغ ان کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. لہذا ہر شیخ کے لیے خلوت بھی ضروری ہے, اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ماں اچھی غذا نہیں کھائے گی تو اس کے بچے کمزور رہیں گے. جو شیخ تنہائی میں اپنے اللہ کو خوب یاد نہیں کرتا اس کے مریدین کی نسبت کمزور رہے گی. جتنا زیادہ شیخ متقی ہوگا اتنا ہی فیضان اس کے مریدوں پر ہوگا. سبحان, ملاقات دوستاں یعنی ملاقات اہل اللہ کی اہمیت. ارشاد فرمایا کہ دوستوں کی ملاقات کی قدر بعض صوفیوں کو نہیں ہے, بس غلبہ حال ہے کیونکہ ذکر میں مزہ آ رہا ہے لیکن فہم کی کمی ہے. عجیب بات کہ ذکر میں مزہ آ رہا ہے لیکن فہم کی کمی ہے. دوستوں کی ملاقات اتنی اہم ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی کہ جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو. عبادی میں یائے نسبتی ہے یعنی یہ میرے ہیں. جو دنیا میں کثرت تعلقات کثرت اسباب معاصی اب اسباب شہوات نفس میں رہتے ہوئے بھی یہ نفس کے نہ ہوئے غیروں کے نہ ہوئے میرے بن کر رہے تو جب یہ دنیا میں میرے رہے تو میں کیوں نہ ان کو کہوں کہ یہ میرے ہیں. فادخلی فی عبادی میں اپنے خاص بندوں کی ملاقات کو مقدم فرمایا اور وادخلی جنتی میں جنت کو بعد میں بیان فرمایا. یہ تقریر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الصاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جنت کی نعمت سے زیادہ اللہ والوں کی ملاقات ہے, اس لیے اللہ والوں کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو جن کے صدقے میں تم یہاں آئے ہو. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ اہل اللہ جنت کے مکین ہیں یعنی جنت کے رہنے والے ہیں, جنت ان کا مکان ہے رہنے کی جگہ ہے اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اہل اللہ کے پاس زیادہ رہو, نفلی عبادت کا اتنا اہتمام نہ کرو جتنا اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا کرو. فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے پاس رہ پڑو. اللہ مالوسی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم, اتنا ساتھ رہو کہ تم ویسے ہی ہو جاؤ, تمہارے دل میں وہی درد آ جائے, آنکھیں ویسے ہی اشکبار ہو جائے, تمہارے سینے میں ویسے ہی تڑپتا ہوا دل آ جائے, ویسے ہی تقویٰ تمہیں تمہیں نصیب ہو جائے. اب اس کی دلیل شرعی پیش کرتا ہوں. اور فرمایا علم عظیم الحمدللہ ابھی عطا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آپس میں ملاقات اور ملنا جلنا مقصود نہ ہوتا تو جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی, بلکہ یہ حکم ہوتا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو, دروازے بند کر لو, خلوتوں میں مجھے یاد کیا کرو, نہیں بلکہ پانچوں وقت مسجد میں جاؤ اور میرے بندوں سے ملو. اس میں ملاقات کی اہمیت ہے کہ مسلمان آپس میں ملتے بھی رہیں. کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے ہمیشہ الگ الگ رہیں. اگر بھائی آپس میں ملے جلیں, کھائیں پیے, ایک دوسرے کی دعوت کریں تو ابا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک تو پنجگانا ملاقات رکھی 5 وقت, لیکن جمعے کے دن ایک بڑا اجتماع رکھا کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوگا, قریہ کبیرہ میں جاؤ, بڑے علاقے میں جاؤ. اسی طرح جمعے میں اور زیادہ مسلمانوں سے ملاقات ہو گئی, پھر عید اور بقرعید میں اور زیادہ اجتماع بڑھا دیا, پھر حرمین شریفین حج و عمرہ کے لیے آؤ جہاں سارے عالم کے مسلمان مل جائیں گے. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی ملاقات عظیم نعمت ہے اور عند اللہ مطلوب ہے. سبحان اللہ, تعالیٰ اپنے کرم سے یہ درد ہمارے سینوں میں منتقل فرما. اللہم صلی اللہ سیدنا, اللہم انت اہل وفعل بنا کمان فانک اہل التقوى. اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.